ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बीरगंज में फैले हैजा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति द्वारा चिकित्सक टोली परिचालित करने का निर्णय। 55 वर्ष पुरानी सुनसरी मोरंग सिंचाई परियोजना की मरम्मत न होने से सिंचाई में समस्या। और इसराइल के हमले में गाजा क्षेत्र में 63 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक ने परसा के वीरगंज में फैले हैजा को नियंत्रण और प्रभावितों के इलाज की व्यवस्था के लिए चिकित्सक दल परिचालित करने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले ने बताया कि गृह मंत्री ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल को हैजा नियंत्रण में परिचालित होने वाले दल का प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश किया है। प्रवक्ता काफले ने बताया कि गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाड़ी सहित सुरक्षा निकायों के प्रमुखों की सहभागिता वाली बैठक में देश की शांति और सुरक्षा की समीक्षा भी की गई। इसी बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल और खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव के बीच वीरगंज हैजा संक्रमण नियंत्रण पर चर्चा हुई। मंत्री पौडेल ने जानकारी दी कि स्थानीय सरकार के समन्वय में मरीजों के तत्काल इलाज तथा सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। नेपाल के संविधान की घोषणा के एक दशक पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष भव्यता के साथ उत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में आज संविधान दिवस और राष्ट्रीय दिवस 2082 की मूल समारोह समिति का गठन किया गया है। नेपाली जनता के बलिदान और लंबे संघर्ष की उपलब्धि के रूप में जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा 2072 आश्विन 3 को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की व्यवस्था सहित संविधान जारी किया गया था। इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष संविधान जारी होने के 10 वर्ष पूरे होने के कारण इस दिवस को और अधिक हर्षोल्लास और भव्य बनाने की तैयारी नेपाल सरकार द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आज हुई बैठक में आगामी आश्विन 2, 3 और 4 को नेपाल के भीतर और विदेशों में स्थित नेपाली दूतावासों तथा मिशनों के साथ साथ जनस्तर पर भी दीपावली सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके इस दिवस को मनाने के लिए एक मूल समारोह समिति का गठन किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने संविधान घोषणा के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय और जनस्तर पर विशेष रूप से मनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने वार्ड और विद्यालय स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करने और अधिक से अधिक जनता को संविधान की उपलब्धियों और महत्व से जोड़ने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव और नेपाल की यात्रा पर आए वियतनाम के उपराष्ट्रपति वो थिंग आन सुआन के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता हुई है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों और मित्रता की जो नींव संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा धारणाओं के साथ आगे बढ़ने पर चर्चा हुई। परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव प्रकाश अधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर दोनों देशों के बीच हवाई संबंधों के विस्तार के लिए आपसी चर्चा करने के विषय पर भी बातचीत हुई। सहसचिव अधिकारी ने जानकारी दी कि द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, डिजिटल प्रविधि के साथ साथ जनस्तर के संबंधों को आगे बढ़ाने के विषय पर भी उनके बीच चर्चा हुई। इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और वियतनाम के उपराष्ट्रपति के बीच आज सिंह दरबार में वार्ता हुई। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि कृषि, उद्योग, जड़ी बूटी, पर्यटन जैसी स्थानीय संभावनाओं पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थतंत्र निर्माण और पार्टी को समाजवाद में रूपांतरित करने का आधार ही उत्पादन है। आज पार्टी मुख्यालय पेरिस डाड़ा में हुई आर्थिक उत्पादन विभाग की पहली बैठक में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि अब पार्टी जनता के साथ प्रत्यक्ष जुड़ने, समुदाय में लौटने और उत्पादन को प्राथमिकता में रखने का अभियान चलाएगी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पूर्व मुख्य सचिव डॉ बैकुंठ अरियाल को सफाई देने के विशेष अदालत के फैसले के विरुद्ध आज सुप्रीम कोर्ट में पुनरावेदन किया है। संरक्षण मुद्रण केंद्र से अंततः शुल्क स्टीकर छपाई के क्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के तत्कालीन सचिव डॉ अरियाल समेत 12 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा दायर की गई याचिका पर विशेष अदालत ने अरियाल सहित को सफाई दी थी। 38,67,17,640 रूपये भरवाने के दावे के साथ दायर किए गए मुकदमे के फैसले पर असंतुष्टि जताते हुए अख्तियार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि #1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्वसाधारण को फोन करके ही जानकारी देने की तैयारी में है। विभाग ने इसके लिए वॉइस कॉल सेवा की तैयारी शुरू की है। बाढ़ का खतरा महसूस होने पर एसएमएस के जरिए संदेश प्रवाह करते आ रहे विभाग ने अब वॉइस कॉल के जरिए भी पूर्व सूचना संप्रेषण करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के बाढ़विद विनोद पराजुली ने बताया कि नेपाल टेलीकॉम के सहकार्य में विभाग ने इस हफ्ते से परीक्षण के रूप में वॉइस कॉल के जरिए सूचना प्रवाह करने की तैयारी की जा रही है। सुनसरी मोरंग सिंचाई परियोजना की संरचना की मरम्मत न होने के कारण कई नहरों में पानी नहीं पहुंच सका है। करीब 68,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई पहुंचाती आ रही 55 साल पुरानी परियोजना की संरचना जीर्ण हो चुकने के कारण सिंचाई में समस्या आ रही है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। नेकपा एमाले की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य ने कहा कि तीज के सांस्कृतिक पक्ष का सम्मान करते हुए वर्तमान समय के अनुसार परिमार्जित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, नेपाल टेलीविजन कर्मचारी यूनियन द्वारा आज तीज के संदर्भ में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शाक्य ने ये बात कही। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली रक्षा बलों ने गजा के दक्षिणी हिस्से में स्थित खान यूनिस के अल मवासी इलाके में एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इस हमले का निशाना हमास का एक शीर्ष कमांडर बताया जा रहा है। हमला एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां बड़ी संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इजरायली विमानों के बम सीधे एक शरणार्थी शिविर पर गिरे जिससे भीषण तबाही हुई। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार इस हमले में कम से कम 63 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना ने दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की है। संयुक्त राष्ट्र, कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने नागरिक हताहतों की संख्या पर गहरी चिंता जताई है और एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। इस घटना से चल रही युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की वार्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वीरगंज में फैले हैजा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति द्वारा चिकित्सक टोली परिचालित करने का निर्णय। 55 वर्ष पुरानी सुनसरी मोरंग सिंचाई परियोजना की मरम्मत न होने से सिंचाई में समस्या और इसराइल के हमले में गाजा क्षेत्र में 63 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।